ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਵ ਕੀ ਜੈ। ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਜੈ। ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਜੈ। ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਦੇਵਾਨੰਦ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਜੈ ਹੋ। ਸਰਵ ਸੰਤੋ ਕੀ ਜੈ, ਸਰਵ ਭਗਤੋ ਕੀ ਜੈ, ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ੋ ਕੀ ਜੈ, ਸ੍ਰੀ ਕਾਸੀ ਧਾਮ ਕੀ ਜੈ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਡਾਣੀ ਧਾਮ ਕੀ ਜੈ, ਸ੍ਰੀ ਕਰੋਥਾ ਧਾਮ ਕੀ ਜੈ, ਸ੍ਰੀ ਬਰਵਾਲਾ ਧਾਮ ਕੀ ਜੈ। ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ਸਿਮ ਕਿਰਪਾ ਸੇ ਬੱਚੋ ਆਪਕੋ ਸੂਖਮ ਵੇਦ ਕਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਆਪ ਸੂਖਮ ਵੇਦ ਬਾਂਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੂਖਮ ਵੇਦ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਰਗ ਯਜੂ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਅਥਰਵ ਚਾਰੋ ਵੇਦ ਚਿਤ ਬੰਗੀਰੇ, ਸੂਖਮ ਵੇਦ ਬਾਂਚ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਸੋਹਨ ਸਾ ਸਤ ਸੰਗੀਰੇ। ਸੁਖ ਸੰਵੇਦ ਵਾਚ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਸੋਹਨ ਸਾ ਸਤ ਸੰਗੀਰ। ਤੀਨ ਲੋਕ ਔਰ ਭਵਨ ਚਤੁਰਦਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਤਸੰਗੀ। ਬੱਚੋ ਯੇ ਬਾਤੇ ਯਦਿ ਆਪ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਤੇ ਆਪਕੋ ਯਹ ਸਭ ਪ੍ਰਮਾਣ ਯਹ ਸੰਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਤਾ तो आपका माथा ठनकाओ, आपके मन में सौ सौ दोष दास के प्रति आते कि यू पता नहीं क्या बकवास करता है, क्या किसी को भी ज्ञान नहीं, यही शंका आदरणीय धर्मदास साहेब जी के मन में आई थी संत जी के, भाई ये जंदा बाबा ऐसी बातें बता रहा है तो कोई ना कोई हमारे हिंदू धर्म में भी इन बातों को जानने वाला अवश्य मिलेगा, क्योंकि शास्त्र हमारे। उसके बाद वो अपने गुरु जी के पास गए। गुरु जी तो रूपदास जी ने कह दिया, भाई मैं जितनी जानू था बेटा, मैंने तेरे से कुछ नहीं छुपाया, जिस तरह के प्रश्न आप कर रहे हो इनका उत्तर मेरे पास नहीं है, और जिसने तुझे ये ज्ञान दिया है उसी के पास जा, उसी से समाधान पूछ। लेकिन धर्मदास के सामने यह बात खटक रही थी कि अनपढ़ आदमी जिंदा बाबा, इसको ज्ञान कैसे हो गया, ये इसने भी तो किसी हमारे हिंदू से सुना होगा, पर अवश्य कोई संत मंडलेश्वर कोई पीठाधीश इसका जानकार पाऊंगा। अब सब जगह जितने भी सुप्रसिद्ध या वैसे छोटे मोटे भी संत हिंदू धर्म के उस टाइम प्रवक्ता थे, सत्संग सुनाया करते थे, सबसे मिला और जाते ही 10-20 रुपए रख दे। ये खासकर इन संतों के अंदर जो भेंट ज्यादा दे, दक्षिणा ज्यादा दे, उसको ज्यादा महत्व देते हैं। इस बात की धर्मदास जी को भी खूब पता था कि ये तभी प्रसन्न होकर मुझे कुछ राह बताएंगे, जाते 5-10 रुपए तरह, क्योंकि उसमें 5-10 रुपए आज के 5 लाख के बराबर थे। वहां तो एक पैसा भारी होता था उस समय। सबसे प्रसन्न कर लिए, किसी के पास इसका अग्ग बात नहीं थी। श्री कृष्ण विष्णु भगवान है, सारी सृष्टि के रचन आ रहे हैं, इनके कोई माता पिता नहीं, ये आपो आप है, स्वर्ग से ऊपर कोई स्थान नहीं। आखिर में हार के थक के और कति बुरी तरह रोवे कि अब के बना, परमात्मा फिर भी उसको जब वो धक्के खा के आ रहा था, एक अन्य हिंदू साधु के रूप में एक पेड़ के नीचे बैठ गया नदी के किनारे। 5-7 भगत और बैठे थे उसके पास, विद्यास वैसे ही बाबा भी चलता फिरता था। धर्मदास जी के रास्ता उसके साथ से था, उसने सोचा चल लग गया, आगे चल ऋषि मंडलेश्वरों के पास घूमया और साधु का रूप दाता ने बुला रखा था। फिर मालिक की प्रेरणा अपने बच्चे को लेना था सर, उसी समय प्रेरणा हुई कि काफी देर से चल रहा हूं, विश्राम भी करना है, यही कर लेता हूं और इसकी तलाशी भी ले लेता हूं। वहां बैठ गया जाकर और बैठे थे, इतने तो बोलना को नहीं, वो दूसरे उठकर चले गए। जब एकला रह गया परमात्मा बोले, धर्मदास खोज लिया तत्व ज्ञान, मुझे बता दे क्यों मिला होता कितने। आंखें फटी की फटी रह गई, मालिक उसी समय उसी रूप में आ गए। बच्चों इस नरक से निकालने के लिए उस मालिक ने अपने एक बच्चे के लिए कितना कुछ करना पड़ा, कितने खाड़े कर दिए। वहां से शुरुआत करनी थी अपने कलयुग की भक्ति की, और वो अच्छी आत्मा थे, भगवान के बच्चे थे, पूर्व जन्म के संस्कारी मालिक के थे। जैसे संबंध था, संबंध ने कितनी कुर्बानी दी थी, बेटा काट दिया मालिक के नाम पर, अब उसके लिए खाड़े करे थे परमात्मा ने, कहां कहां कैसे बंदी बने, कोड़े खाए, उसकी शेल बिस्तर बिछाए। किसी जन्म का ये धर्मदास जी भी ऐसे ही कुर्बान आत्मा था, लेकिन ये ठीक से टके नहीं क्योंकि ज्ञान संपूर्ण नहीं था, इसलिए मालिक उसके लिए फिर वहां बैठ के जाकर धर्मदास जी परमात्मा के चरणों में गिर के अपनी ढीठता, अपने अविश्वास, अज्ञानता का बहुत पश्चाताप किया। हे मालिक, आप सत्य, आपका ज्ञान सत्य, आपका समाधान सत्य। परमात्मा बोले, ये प्रेरणा मैंने की थी तेरे पर। काल का बेटा बहुत लंबा जुगाड़ है, बहुत लंबा षड्यंत्र पाया किसी के पास ये ज्ञान। हे महाराज, ज्ञान के वो तो गंध भरा, काम करो सारा सड़ रहे हैं। तो बच्चों, अब आपको दास बताना चाहता है परमात्मा की महिमा और सूक्ष्म भेद वाला ज्ञान संत गरीबदास जी के प्राप्त हुआ परमेश्वर से, उनके सतगुरु और भगवान स्वयं कबीर साहब थे, जिनका गुरु भगवान और ज्ञान एक नंबर का, तो उस पर हमने विश्वास करना चाहिए। लेकिन विश्वास करने के लिए कुछ आधार होता है। हिंदू धर्म के लिए गीता और वेद, 18 पुराण, ये आधार है कि ये अध्यात्म के मूल ग्रंथ है। उन मूल ग्रंथों से आपको परमात्मा की वाणी सिद्ध कर दी, रग यजु है साम अथर्व, चारों वेद चित भंगी रे, सूक्ष्म वेद वाच साहेब का, सोहन सा सतसंगीर, तीन लोक और भवन चतुर्दश, कोई नहीं सत्संगी। क्यों? क्योंकि उनके पास ये तत्व ज्ञान नहीं। बच्चों, यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 में यही कहा है, कोई तो भगवान को साकार कहता है, राम कृष्ण रूप में, अवतार रूप में आने वाला, अन्य कहते हैं वो कभी साकार होता ही नहीं, वो तो निराकार है। परमात्मा साकार है या निराकार है, किस स्थिति में आता है, वो कैसे लीला करता है, इसकी जानकारी तत्वदर्शी संतों से पूछो। गीता 4 श्लोक 34 में और 32 में स्पष्ट भी कर दिया कि जो तत्व ज्ञान होता है वो परमात्मा अपने मुख कमल से आकर बोलता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 और मंत्र नंबर 2 में कहा कि वो परमात्मा कवियों की तरह आचरण करता हुआ घूमता फिरता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 95 के मंत्र नंबर 1 में परमात्मा भक्ति की प्रेरणा अपने मुख कमल से वाणी बोल के करता है और भक्ति के मूल मंत्रों का गूढ़ रहस्यों का ज्ञान वही बताता है। गीता 4:34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो स्वयं मालिक बोलता है कवियों की तरह काव्यान चौपाइयों में श्लोकों में और शब्दों के माध्यम से वो तत्व ज्ञान है उसको किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। बच्चों ना वेदों में तत्व ज्ञान गीता वेदों का सारांश है उसी का छोटा रूप है तो इनमें ज्ञान नहीं है वो तत्वदर्शी संत से पूछो। वो तत्वदर्शी संत की पहचान श्री मद भगवत गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक 1 में बता है कि ऊपर को मूल ये तो मूल मालिक सारी सृष्टि का रचने वाला समझो संसार रूपी वृक्ष है जिसकी ऊपर को जड़ है और नीचे को तीन गुण रूपी शाखा है। इसके सभी विभागों को जो बता देगा सह वेदवित वो वेद के तात्पर्य को ठीक से जानने वाला है यानी वो तत्वदर्शी संत है। धर्मदास जी और गरीबदास जी के सतगुरु ने बताया कबीर अक्सर पुरुष एक पेड़ जो जमीन से बाहर दिखाई देता उसको पेड़ बोलते पेड़ा तना। गरीब अक्सर पुरुष एक पेड़ है निरंजन व कीटार और तीनों देवा शाखा है ये पातुल संसार। फिर स्पष्ट कर दिया कबीर एक साध्य सब सदर सब साध्य सबका मालिशी चरणों को पले पुल अगा सभी पार्ट्स ऑफ द ट्री वर्क्स के सभी विभाग बता दिए कि तना अक्षर पुरुष है दारिय सर पुरुष है सर पुरुष और तीनों देव आरदगुण ब्रह्मा सत्पुण सत्तम गुण शिवजी रूपी शाखाए और पात्र रूप संसार। तो बच्चों फिर साथ में ये समाधान भी कर दिया कि एक का साध्य सब सदन यानी मूल को पूजो उसको इष्ट रूप में मानो उसके बाद अपने अनुष्ठान करो साधना करो। जो आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है उसमें प्रथम और लास्ट वाले मंत्र को छोड़कर सारे इन्हीं शाखाओं वाले मंत्र है और गीता अध्याय 3:10-15 तक यही स्पष्ट किया है कि शास्त्र अनुकूल धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ करने से वो सही भक्ति मानी जाती है। इन यज्ञों के द्वारा इन देवताओं को बढ़ाओ ये यज्ञ से बड़े हुए देवता तुम्हें बिना मांगे ही सब कुछ देते रहेंगे और उस परम अक्षर पूर्ण परमात्मा को इष्ट रूप में प्रतिष्ठित करके फिर सारे धार्मिक अनुष्ठान करो। कहते हैं सब प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है अन्न वर्षा से होता है वर्षा शास्त्र विहित शास्त्र में प्रमाणित धर्म कर्म यज्ञ करने से होती है और कर्म लगाए ब्रह्म ने क्योंकि सबके लोक माए तक काम करके खाना पड़ा सतलोक में कोई काम नहीं था बैठा सब परिमला था। जैसे आप सतलोक आश्रमों में जाते हो आपको सारा बिना बनाए मिला है अरखा और भक्ति करो सत्संग सुनो राजा फिर बताया है कि सब प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है अन्न वर्षा से होता है वर्षा शास्त्र विहित शास्त्रों के अनुसार किए गए अनुष्ठानों से होती है यज्ञ से होती है और यज्ञ शास्त्र अनुकूल कर्मों से होते कर्म लगाए ब्रह्म ने ब्रह्म की उत्पत्ति हुई अक्षर पुरुष से। और अक्षर पुरुष यानी अक्षर का अर्थ यहां पर अविनाशी है, और जहां पर प्रकरण होता है एक से अधिक अक्षर का अर्थ ही अविनाशी होता है, लेकिन सर्वपुरुष अक्षर पुरुष, सर्वपुरुष ब्रह्म है, ये काल है, 21 ब्रह्मांड का स्वरूप, अक्षर पुरुष 7वें ब्रह्मांड का स्वरूप। और फिर परम अक्षर ब्रह्म क्यों कहा, परम अक्षर पुरुष कि वो सब का मालिक वो है। तो इस प्रकार इस अध्यात्म ज्ञान को समझना है, और उस परम अक्षर ब्रह्म को यज्ञों में प्रतिष्ठित करके सारे अनुष्ठान करने चाहिए, तब सफलता हो। कबीर साहब ने बताया, कबीर एक कैसा दे सब सदे, सब साध्य समझा माली सींचे मोल को बुला बुला। पुण्यात्माओं इससे सिद्ध हो गया कि किसी के पास भी वेदों से अटकर ज्ञान नहीं था, और वेदों में वो ज्ञान है ही नहीं जिसकी हमें जरूरत थी, इसलिए क्या रहा। अब इसके ऊपर चलेगा सत्संग शेष, संत गरीबदास जी की अमर वाणी, अथ कथनी बिना करनी का होगा, इसमें से कुछ वाणी सुनाएगा दास। जैसे आपको बताया गया कि काशी विद्यापीठ पटकबरा मनाते थे, उनको विद्वान माना जाता था, उनकी दुकान बढ़िया चला करती थी यहाँ भोले समाज में। तो गरीबदास जी उस पढ़ाई के बारे में कहते हैं जो वो पढ़ा करते हैं, केवल लोगों को ठगने के लिए। गरीब पढ़ना गुणना चातुरी, यह तो बात सुगम, सत सुकृत और बंदगी, यह है बात अगम। के ये गीता वेद पुराण पढ़ लिए, चतुरता दिखा दी, बड़े बड़े लेक्चर जारी हुए, ये तो बहुत आसान है, लेकिन सत सुकृत सच्ची भक्ति, सच्चे अच्छे कर्म और भक्ति, सच्ची भक्ति, बंदगी प्रणाम, बंदगी के अंदर वजह सारा कुछ आ जाता, भक्ति भी आ जाती है, अंतर भी आ जाते हैं, प्रणाम भी आता। कई बार विशेष तौर पर बंदगी प्रणाम को बोलते हैं, बंदगी प्रार्थना भी कह जाती है। फिर बताते हैं कि सत सुकृत अच्छे कर्म और बंदगी परमात्मा की स्तुति नमस्कार प्रणाम भक्ति सच्चे ढंग से पूरे गुरु से प्राप्त करके तत्व ज्ञान के आधार से करना, यह है बात अगम, ये ऊंची बात है, आगे की है, बहुत सबसे आगे की, सबसे श्रेष्ठ। गिरी पढ़ना गुनना रोग है, उलझे दुनिया माही, 52 अक्षर में बंद रहे, आगे की सुध नाही। संस्कृत भाषा के 52 अक्षर बताए, इसको इसलिए सिद्धार्थ कहते हैं जो संस्कृत से सीमित है, इन ग्रंथों तक सीमित है, इनमें वो ज्ञान है नहीं। ये उलझे दुनिया वाले इस लक्ष 84 के चक्कर में रह गए। गरीब पढ़े गुणे पावे नहीं, अनपढ़ ने से न्यार, अकोचर छंद है कैसे पावे पार। कहते पढ़े गुणे पावे नहीं, अनपढ़ ने से न्यार, यानी जो चतुरता दिखाने के लिए पढ़ते हैं वो कभी नहीं परमात्मा प्राप्त कर सकते, ना वो ज्ञान मिले, अनपढ़ ने से न्यार, कि बिना पढ़े भी बात नहीं बने। हम जैसे आप अक्षर ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, आप भले ही अपनी रोजी रोटी के लिए कर रहे हो, लेकिन अब इस पढ़ने से आपको अपने मूल ग्रंथ समझ में आ जाएंगे। ये सूक्ष्म वेद है, इसके अंदर जो गुण रहस्य है वो अन्य वेदों से भी उत्तम और गहरे हैं। इसमें कह दिया पढ़े गुणे पावे नहीं, यह पढ़ाई है वो तो मूर्ख बनाने की, अनपढ़ने से ना जो नहीं पढ़े वो भी दूर रहेंगे। हमारे को अक्सर ज्ञान नहीं था इसलिए हम इन चतुर लोगों की बातों में फंसे रहे। अंग्रेज वेद कथे चत चूक है मन में मान मरोड़, कहने मात्र के तो पंडिता ये होते ली के डोर। कि इन वेदों के पढ़ने मात्र से कुछ भी हासिल नहीं होना, क्योंकि वो ज्ञान है ही नहीं जी। अपने को जरूरत है मोक्ष प्राप्त हो, और वो ज्ञान मालिक प्रत्येक युग में आकर बोलते हैं, पर कदर नहीं बनी। गरीब वेद कथे चे चूक है मन में मान मरोड़ अहंकार, और कहने मात्र के तो पंडित है ये वो तेली के ढो के 84 लाख युगों में जाएंगे। अब जैसे एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया संत गरीबदास जी ने, बच्चों ये गाना बजाना समय के अनुसार शब्द भी सुनाए जाते हैं और ये कड़वी गोली भी खिलाई जाएंगी तभी ये रोग कटेगा, सारा ट्रीटमेंट कंप्लीट करना पड़ता है। अब ध्यान से सुना, पुराने समय में तिलों से तेल निकाला जाता था, वो व्यक्ति जो काम ये करते थे उनको तेली बोलते थे, वो एक कोल्लू लगाते थे। वो कोल्लू एक मशीन होती है जिसमें 3-4 गिरारी सी होती, मोटी मोटी भारी भारी, और उसके ऊपर एक ऐसा पात्र लगा होता जिसमें नीचे सुराख होता और उसमें सरसों डाल दी, तिल डाल दिए, वो धीरे धीरे नीचे जाता रहता, कोल्लू चलता है। एक लंबे लकड़ लंबा लकड़ कम से कम भी 15-20 फुट लंबा, उस कोल्लू को चलाने के लिए एक लंबा लकड़ फंसा के और उस लकड़ को पाट बोलो हमें लाठ पाट, उसको बैल से चलाया जाता था, और वो बैल उस लकड़ की जितनी लंबाई होती है उसके में ही सर्कल में घूमना होता था। उसको वो सर्कल होता था, उसके एक सर्कल में घूमता था, सेम कति फिक्स्ड होता था उसका डायमीटर, उसी परिधि में वो बैल घूमता रहता था और उधर से कोल्लू चलने से तेल निकलता। उस कोल्लू को चलाने के लिए एक बैल का प्रयोग किया जाता था, वो उस लकड़ लंबे लठ 15-20 फुट 25 फुट लंबे लठ के एंड पे लास्ट में एक कुंडा डाल के उसमें रस्सा बांध के और उस बैल के दोनों तरफ कंधे से बांध दिए जाते थे रस्से, और उसको चलाया जाता था, तब वो कोल्लू घूमता था और उसमें डाले हुए सरसों या तिल उनका तेल निकलकर बाहर आता था, वो तेली कहलाता था, और उसको खींचने वाला तेली का बैल क्या है। उस बैल के आंखों पर पट्टी बांध दिया करते थे और एक आदमी उसके पीछे होकर 2-3 बार उसका लठ मारता जोर के, और वो बहुत तेज चलता, तो फिर उसको ये भय हो जाता कि लठ हड़ा तेरे पछे पछे है, वो अपने आप स्पीड में रहता था, और इस तरह वो कोल्लू सारा दिन चलता था, बीच में थोड़ी बहुत देर पानी पिला दिया, चारा खिला दिया, फिर जोड़ दिया चलता। तो उसका सेवन सीमित दायरा था, उससे 12 कदम भी नहीं जा सकता था वो। अब इसके ऊपर ये कुछ बाणियां आपको समझाने के लिए बताना पड़ा, इतना गजब का ज्ञान दिया इसने, 100 का 100 सत्य। गरीब वेद कथे चित चूक है मन में मान मरोड़, कहने मात्र के तो पिंडता ये हो तेली के डो। ये अगले जन्म में तेली के बैल बनेंगे। एक तो गान ये दिया है कि साधना ठीक नहीं करते तो शुद्ध नहीं जाएगा। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे कहीं कुरड़ी चरने जाई। इस वाणी का तो ये अर्थ है। अब इसके ऊपर आगे देखो, गरीब आंख बंद है दिखे नहीं चल मारो मारे तेली के तो बैल को, घर ही को से हजारी के आंख बांधी बैल की, डरता चालो मारो मार वो सपीट तो चलता रहता। उस तेली के बैल को उस सर्कल के अंदर ही सारा दिन एक महीने में 50,000 कोस एक महीने में तय कर देता, यानी एक कोस 3 किलोमीटर, यानी 1.5 लाख किलोमीटर वो एक महीने में पूरे कर देता। उसमें चल चल के इतना सफर तय कर लेता, रहता वही ठेगा, एक कदम उससे बाहर नहीं जाता। बच्चों ये स्पिरिचुअल लेक्चर है या अध्यात्मिक घंटी ले रहा हूं आपकी स्कूल की, जिसको ऐसे समझाने से आपके अंतःकरण में युग्मन जचेगा। एक क्या होता था पहले, जैसे फसल होती थी गेहूं चने, इनको अलग करने के लिए भूस से एक गाट्टा जोड़ा जाता था, गाट्टा उसके बीच में एक लठ गाड़ के मोटा था, उसका रस्सा बांध के फिर 5, 7, 10 पशु, जिसमें भैंस गाय काटड़ा काटड़ी ऐसे सिर में बांध दिए जाते थे, और बीच में लठ गाड़ दिया, उसके चारों तरफ वो भूस डाल देते थे चने या गेहूं, क्योंकि दास ने देखा है हम किसान के गर्दन में था, इसलिए 90% बच्चे किसान वालों को पता नहीं, जो शहर में रहते हैं वो भूसे कैसे निकलता था, जिसकी ये वाणी जिस बारे बोली है। अब तो मशीनों से निकल जाता, कट 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 2 घंटे में, पहले महीना महीना लगे रहा करते। दास का जन्म ऐसे समय में दिया दाता ने जब वो 5505 निकट आ रहा था, और वो पिछला प्रोसेस सारा पता है जो एक वाणी में बोला गया है। दास को समझने में आसानी रही, आपको समझाने में आसानी होगी। तो उसको हम तो गाट्टा बोला करते, गाट्टा जोड़ रखे, वो सारे पशु एक लाइन में चलते रहते, चारों तरफ घूमते जैसे तेली का बैल घुमा करता। ये उस फसल को काटने के लिए उनके पैरों के नीचे वो फसल कट जाती, छोटा छोटा टुकड़ा भूस बन जाता, फिर उससे गेहूं चने अलग कर लेते और भूस अलग हो जाता, उसको गट्टा बोला करे। और पलवल साइड इधर फरीदाबाद साइड में उसको धाए बोलते थे, धाए धाए यानी पशुओं का एक समूह, एक से एक गले का रस्सा बांध दिया जाता था, वो बाहर नहीं जा सकते अंदर आ नहीं सकते क्योंकि एक दूसरे को धक्का नहीं दे सकते, वो एक लाइन में चलते थे चारों तरफ सर्कल में। अब इसको इन अज्ञानी गुरुओं के ऊपर सेट किया है दाता संत गरीबदास जी ने इस वाणी को, गरीब दाएं जुड़ी अज्ञान की गह गहाटा ठोर, एक पेड़ चाले नहीं काड़े बड़ी बड़ी खोर। के जैसे वो पशुओं के द्वारा धाय जोड़ के घुमाई जाती है और वहीं घूम रहे होते, उससे अलग एक कदम नहीं जा सकते। तो जितने भी ये संत हैं इन्होंने अपने अपने चेले बांध रखे अपने अज्ञान वाले लटके, गुरु बनकर बैठ गया और उसको पशु बांध रखे पशु पुत्र, वो इस जन्म मरण के चक्कर में यही घाटा गा रहे हैं, यही दाएं चल रही है उनकी, एक पेड़ चाले नहीं और कड है बड़ी बड़ी खोर, खोर मैंने बड़े बड़े कदम रखे तेजी से चलने, पाथे डंडे लागे होंगे। तो ये सारे जितने भी चेले हैं उनके जितने गुरु हैं उनके जितने शिष्य हैं उनको तो धाएं बताई ये घाटा, और इस जन्म मरण के चक्कर को एक ये सर्कल बताया कि इसी में ये घूम रहे हैं, एक कदम इस बाहर नहीं जा पाए। जाना सतलोक है, जैसे किसी ने सफर करना है तो कदम जितने रखेगा मंजिल की ओर होते हैं ठीक रास्ते पर, और ये वही एक बांध रखे स्वार्थवश जिसने पशुओं को, वो तो उस सर्कल में घूम सके उस तो बाहर जा ही नहीं सकता। गरीब दाएं जुड़ी अज्ञान की गह घाटा ठोरे एक पेड़ चाले नहीं काड़ बड़ी बड़ी खोर। गरीबदास जी ने कहा है, कोई है रे परले पार का जो भेद कहे झनकार का, वारई गोरख वारई दत्त, यानी ये सब वार दरु प्रहलाद अर्थ वार ही सारे, ब्रह्मा भी वार, ये भी वार, सारे ब्रह्मा विष्णु महेश ही पर दुर्वासा वार, ये गह गाटा ठोर। गरीब चार वेद सट शास्त्र पढ़े 18 पुराण, सतगुर पूरा मिला नहीं पंडित हो सी सवान। ओ कबीर साहब कहते हैं, गुरु बिन काहू न पाया गया ना, जो तो था वो छड़े किसान। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी समझे अनुसार रह गया नहीं। बच्चों एक तो होती है मान बड़ाई अहंकार, और एक सच्चाई जो होती है वह मान बड़ाई नहीं कहलाती। जैसे दास कह रहा है, और जब आपको भी समझ आ गई है, स्पष्ट हो गया, आपको पता लग गया है कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी समझे ना सार रहे अज्ञात। वेद पढ़े पर वेद न जाने, ये वाचे पुराण 18 और पत्थर की पूजा करे। भूल गए सर जनारा, सर आदि निकलवा पत्थर पूजवा, क्या इन वेद पढ़े, क्या इनको गुरु मिला। जय सतगुरु की संगत करते ये सकल कर्म कट जाए, ये कोई झंझट नहीं करना पड़ता। अमरपुरी पर आसन होते सतलोक, जहां कोई कष्ट नहीं, जहां धूप ना चाहे। तो दास ये कहे कि या तो भगवान कबीर साहब मेरे गुरु भगवान हो गरीब दास, और चौथा दास इनके अतिरिक्त, वर्तमान में दास के अतिरिक्त विश्व में किसी के पास ना वेद ज्ञान, ना गीता ज्ञान, ना कुरान और बाइबल ज्ञान, किसी को किसी प्रकार का ठीक ज्ञान नहीं। इसको कोई कहे ये मान बड़ाई करता है, उसकी अपनी समझ है, अपनी सोच है, लेकिन यह 100 की 100 सच्चाई है। जैसे 2,000 के नोट पर या 1,000 के नोट पर, 500 के नोट पर ये लिखा है कि मैं धारक को 500 रुपये देने का वायदा करता हूं, तो क्या उसने मान बढ़ाई कर रखी है कि ये नोट अपनी बढ़ाई करता है, छाती पे लिखवा रहा है। वो सच्चाई है, वो लिखना भी जरूरी है। तो दास को ये बताना भी आवश्यक है कि दास के अतिरिक्त विश्व में किसी के पास यादम ज्ञान नहीं है, ना वेद ज्ञान ठीक है, ना गीता ज्ञान ठीक है, ना पुराणों को जानते हैं, ना पुराण वाले कुरान को ठीक से सुन, ना बाइबल वाले बाइबल को ठीक से सुन। गरीब चार वेद सट शास्त्र पढ़े 18 पुराण, सतगुरु पूरा मिला नहीं पंडित हो सी स्वान। अंग्रेज चार वेद सट शास्त्र पढ़े 18 बोल, खसम बांझ के होते है पर बेटा ना ही गोद। एक अजब गजब उदाहरण दिया है कि इन चार वेद 18 पुराणों को पढ़ने से तो ऐसी दशा है, ये दिख पंडित गुरु शिष्य दोनों है, गुरु भी है उनके शिष्यों की कमी नहीं, लेकिन बांध स्त्री का संतान नहीं होती, उसका पति भी होता है। इसी प्रकार इनके गुरु भी है, ये शिष्य भी है, इनमें भक्ति रूपी लाल बनेगा नहीं। बच्चों एक एक बात कह नहीं सकता, 100,000 टके की है, 100,000 टके की। गरीब भावे 100 करोड़ गीता पढ़ो, 100 करोड़ भागवत, बिना सतनाम व्रत है बचे काल न मोत। गरीब घर अग्नि में डाल कर पंडित कर है होम, सुरो वासना जात है क्या करत है होम। गरीब सुमरण सेवा बंद की सब कोई जानत खूब, बिन सतगुर क्यों पाइये कबीर से महबूब। के ये पंडित लोग हवन करते हैं, इसका क्या लाभ है कि देवताओं तक इसकी वासना जाती है, स्मेल गुड स्मेल जाती है, और जिसके वश होकर वो हमें यहाँ राहत देते हैं। तो ये तो हमें सिर्फ हमारी भक्ति में एक सहयोगी है, एक आइटम है हवन यज्ञ। हमने पांचों करनी पड़ेंगी तब तो ज्यादा लाभ होता है। किसी रोग का ट्रीटमेंट पूरा ही करने से बात होगी। गरीब सुमन सेवा बंदगी सब कोई जानत पूर्ण, अब भक्ति भी करनी चाहिए, सुमन भी करना चाहिए, पर कहते पिन सतगुरु क्यों पाइए। सतगुरु के बिना कैसे मिलेगा वो कबीर से महबूब, वो भगवान कबीर से प्रिया तुम प्रिय भगवान हमारे कैसे पाओगे। ये दूसरे संत बनावटी इतने गजब के हो जाएंगे, क्या बात, सिर पर उस्तरा करा लिया, माथे पर तीन तलक माला चार पांच डाली, लाल भगवा वस्त्र धारण कर लिए, अनु बैठ जाते हैं कतिया कटके। गरीबदास जी कहते हैं गरीब कोरा कलश कुमार का ऊपर चित्र अनूप, वस्तु नीति समझ है जैसे जलवन को, ऊपर तुंडा साध का अंतर रख्या को, ऊपर त साधु दिखे गजब का बनावटी सी जबरदस्त, जैसे कुम्हार का यानी कोरा कलश कुम्हार से लाए, उसका ऊपर कितनी अच्छी चित्रकारी होती है, उसमें जल है नीचे तट से चित्रकारी, ऊपर का दिखा क्रमिया जो संत ऐसा है जिसके पास यथार्थ ज्ञान नहीं है, वो तो ऐसा है जैसे कोरा कलश कुम्हार का ऊपर चित्र अनूप, वस्तु नीति समझ है जिसके लिए लाए थे जल है नहीं मीठा, और जैसे जल बिन कुह जैसे कुआ बिना पानी का के काम। गिरी पांचों मुद्रा पिंड में अग बुद्र शरीर, बावन गंडे गंग है खेवट जहां कभी। कहते ये शरीर सथूल शरीर में पांच मुद्रा है, उन्मनी खेचरी भूतरी चाचरी आदि, और इससे अग बुद्र शरीर सूक्ष्म शरीर और है। कहते उससे पार करने के लिए सतगुर कबीर साहब का सच्चा गुरु मिलेगा जो बात बने। गरीब नाम सार है निर्मला, सार नाम ये निर्मल है, पाक नूर निर्वाण दास गरीब कबीर को भक्ति दी है दान। बच्चों ये अमृत वचन है, बहुत गूढ़ और गहरे है, और आपके लिए जैसे गीता उंगलियां परटवा दी, वेदों का सार निकाल के आपके समक्ष रख दिया, छोटे छोटे बच्चे समझ रहे इस बात को जो तीसरी चौथी कक्षा में पढ़ रहे, और जो इन काशी विद्यापीठ में पढ़ने वालों के आज तक समझ नहीं आई। तो हु इज गुरु, हु इज सतगुरु, और हु इज गॉड, ये आप अच्छी तरह समझ चुके हो बच्चों। परमात्मा आपको इतना दर्द कर दे जैसे सम्मन ने की और सेऊ थे, आप इतने दर्द हो जाओ गरीब महिमा की जय संत की, तन मन धन सब दे, सिर मांग टाला नहीं मोर ध्वज लग गए, यानी ऐसी परिस्थिति परमात्मा के प्रति किसी परिस्थिति ऐसी आ जाती है तो मालिक से दूर नहीं हो, कितनी ही कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़े। आज हम थोड़े से कष्ट को देखकर भगवान से दूर हो गए, फिर अगले जन्म में क्या होगा। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहावन भोरे, कहीं कुरड़ी चरने जाई। आज कोई ना कोई बहाना काल कर देगा सत्संग से उठने का, आलस कर देगा, कोई काम अड़ा देगा, या वैसे आत्मा किसी पाप के कारण रोगी हो जाती है तो अरुचि बन जाती है सत्संग सुनने में या सुमरण करने में। दान की इच्छा समाप्त होती चली जाती है, सेवा में रुचि नहीं रहती। तो उस समय के लिए ये याद रखो, आज हम मानव हैं, अपनी मर्जी से कितने आलस कर ले और कितने भगवान से दूर हो जा, स्वतंत्र है। और कल को गधे बन गए, बैल बन गए, नाक में नाथ गल जाएगी, या 2.5 मन का कमर के ऊपर एक थैला होगा गधे के। तो आलस तो उसमें भी होगा, मन तो यही है। कई कहते हैं मेरे से नहीं होती सेवा, चलो कोई बात नहीं, सेवा तो करनी चाहिए, सेवा से दौड़ने वाला चाहिए, तो मन तो वहां भी दुखी करेगा, गधा अपने पाछे भी सोचेगा कोई कि पटक दो बोरे ने गेर दो डाल दो, एक आधी पर गधा ऐसा भी कर देता है, फिर उस पर ज्यादा भार लादा जाता है और लठ भी पड़ते हैं, फिर वो सीधा चलता है। इसलिए इस मन पापी को आत्मा यही समझा सुड़ डाले, दाता से दूर ना हो। इस संसार में सुख नाम की चीज नहीं है। यदि सुख होगा, या जो नकली सुख भी अगर चाहिए तुम्हें यहाँ का, तो भी दाता के चरणों में मिलेगा, रहोगे तो मिलेगा। इससे दूर होकर कुछ दिन जो ये समय आप भक्ति कर चुके हो, सच्ची मर्यादा में रह गए, वो आपकी बैटरी सी चार्ज होगी जैसे इन्वर्टर की हो जाती है, और फिर चार्जर हट गया, वो बैटरी फिर भी काम करती रहेगी, और ऐसा लगेगा कि बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक है, कोई फर्क नहीं पड़ा, चार्जर भी हटा दिया। जब तक वो संग रह सकती है, एनर्जी है बैटरी में, वो काम पूरा करेगी। जब वो एनर्जी खत्म हो जाएगी, अग संग्रह हो नहीं रही, तो एकदम ही वो सब सुविधा बंद हो जाएगी, पंखा भी बंद, बल्ब भी बंद, और भी कार्य कर रहे होंगे, कंप्यूटर भी बंद, फिर बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए इन सब बातों को ध्यान रखो, याद रखो, मुश्किल से दाव लगा, 7.5 अरब आबादी में से आप ये थोड़ी सी आत्मा परमात्मा की शरण प्राप्त कर पाए हो, तो बच्चों परमात्मा आपको मोक्ष दे, अपने चरणों में रखे, आपकी तरफ बने, कुर्बान हो जाओ, सत्संग सुना करो ढंग से, देख परमात्मा ने कहां से कृपा कर रखी है, आंख खोल लो ना जो फूक निकली, और कोई नहीं पूछेगा, धके फते करो कि कुत्ते को देखेंगे। परमात्मा साथ इसलिए होगा कि हमारे और कामों में विशद करेगा, इसलिए मालिक पर ज्यादा ध्यान दो, काम करो, काम न कोई मना करे, उस काम में बरकत भी आप मिलेंगे, दाता आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, सत्साई।